पेरिस। जब ये नाम सुनते हैं तो जहन में रोशनी, मोहब्बत, फैशन आता है, मगर पेरिस इसे कहीं ज्यादा गहरा है ना?
जी बिल्कुल, पेरिस की हर गली, हर इमारत वो एक कहानी सुनाती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जिंदा तारीख है।
तो आज हम उसी जिंदा तारीख के कुछ औराक पलटने की कोशिश करते हैं, उन मशहूर मकामात को देखते हैं जो पेरिस की शनाख्त बन चुके हैं।
और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मकामात सिर्फ खूबसूरत क्यों नहीं है, बल्कि वो फ्रांसीसी तारीख और इकदार के बारे में क्या बताते हैं।
तो शुरू करते हैं उन बड़ी शानदार मेहराबों से, आर्क डी ट्रियंफ दे लितवाल, शांज़-एलिज़े के बिल्कुल सिरे पर। ये तो बहुत ही जबरदस्त है।
हाँ, जबरदस्त तो है। असल में नेपोलियन ने इसे अपनी फौजी कामयाबियों की याद में बनवाना शुरू किया था, तो शुरू में ये ताकत और फतह की अलामत थी।
अच्छा, सिर्फ फतह की?
शुरू में तो यही था, लेकिन फिर वक्त बदला। पहली जंगे अजीम के बाद जब वहां नामालूम सिपाही की कब्र बनी तो इसके माने में गहराई आ गई। ये कुर्बानी और कौमी याददाश्त की अलामत भी बन गई।
यानी यादगारें भी वक्त के साथ अपना मतलब बदल लेती हैं।
बिल्कुल, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक अपना पैगाम मुंतकिल करती हैं और हर नस्ल उसे अपने तजर्बे से जोड़ती है।
और वो जो प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड में मिस्री ओबेलिस्क है, वो कैसे पेरिस पहुंचा?
वो मिस्र की तरफ से एक तोहफा था 19वीं सदी में। उसकी मौजूदगी पेरिस को एक तरह से आलमी सकाफत का मरकज दिखाती है, जो कदीम तहजीबों से भी जुड़ा हुआ है।
और वो स्टैच्यू डे ला लिबर्टी के छोटे मॉडल्स, वो भी तो हैं पेरिस में।
जी हाँ, इल ओ सिग्ने और जार्दियां दु लुक्सेमबर्ग में। वो हमें याद दिलाते हैं उस बड़े मुजस्मे की तैयारी की जो फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया था। ये भी एक बैन अल-अक़वामी ताल्लुक की कहानी है।
अच्छा, अब जरा इमारतों की तरफ आते हैं। कॉन्सर्जरी, इसकी कहानी तो बड़ी ड्रामाई लगती है, पहले महल फिर जेल।
हाँ, ये फ्रांसीसी तारीख का एक बड़ा तजाद है। एक ही इमारत में शाही शानो शौकत भी रही और फिर इनकलाब फ्रांस के दौरान वो बदनाम जमाना कैद खाना भी बनी। मारिया एंटोनेट यहीं कैद थी।
ओह, ये तो वाकई तारीख का एक अजीब रुख है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि ताकत कैसे बदलती है। और इसी तरह की एक और अहम इमारत है पैंथियों।
पैंथियों, हाँ, वहां तो फ्रांस की बहुत सी मशहूर शख्सियात दफन है ना?
जी, विक्टर ह्यूगो, मैरी क्यूरी, वोल्टेयर, रूसो। ये पहले एक चर्च था, लेकिन इनकलाब के बाद इसे अजीम फ्रांसीसी शहरियों के मकबरे में बदल दिया गया।
तो वहां कौन दफन है, इससे पता चलता है कि फ्रांस किन लोगों को हीरो मानता है?
यकीनन, अदीब, साइंसदान, फलसफी, मुजाहमती जंगजू। ये इंतखाब फ्रांस की सेक्युलर अखदार इल्म और आजादी की अहमियत को जाहिर करता है।
अब इबादतगाहों की बात करते हैं। नोट्र डाम द पेरी, वो तो सबसे मशहूर है।
हाँ, नोटरडाम तो गॉथिक तर्ज तामीर का शाहकार है। वो ऊंची छतें, नोकीली मेहराबें और रंगीन शीशे वाली खिड़कियां।
इनका मकसद क्या होता था?
मकसद था रोशनी और बुलंदी के जरिए एक रूहानी माहौल बनाना, इंसान को खुदा के करीब महसूस कराना। लेकिन पेरिस में सिर्फ नोटरडाम ही नहीं है।
सही,
सेंट शेपल के शीशे का काम हैरत अंगेज है। मॉन्टमार्थ्र की पहाड़ी पर सफेद सैक्रे कोर की बसलिका है, और फिर ग्रैंड मॉस्कोडी पेरिस भी है जो इस्लामी फन्ने तामीर का नमूना है। ये सब शहर का मजहबी तनव्वो दिखाते हैं।
यानी पेरिस सिर्फ माजी नहीं, हाल में भी जीता है। जदीद इमारतें भी तो हैं, सेंट्रल पोम्पेडू, वो तो बिल्कुल अलग ही चीज है।
हाँ, वो 1970s की दहाई में बनी थी रेंजो पियानो और रिचर्ड रॉजर्स ने। उसका डिजाइन वो काफी इनकलाबी था। सारी पाइपें, सीढ़ियां, स्ट्रक्चर सब बाहर से नजर आता है।
ऐसा क्यों?
ख्याल ये था कि सकाफत को ज्यादा खुला और सबकी पहुंच में लाया जाए। रिवायती म्यूजियम की जो एक इलीट सी तस्वीर होती है ना, उसे तोड़ा जाए।
और लूव के सहन में वो शीशे का पिरामिड, उस पर भी तो बहुत बात हुई थी।
जी बिल्कुल, आयो मिंग पेई का डिजाइन था। पुराने महल के साथ ये जदीद शीशा, इसने पुराने और नए के ताल्लुक पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी।
और आईफिल टावर का क्या कहें, वो तो अब पुराना हो गया है लेकिन लगता अब भी जदीद है।
आईफिल टावर, हाँ, 1889 में बना था आलमी नुमाइश के लिए। शुरू में बहुत लोगों ने इसे नापसंद किया, कहा कि ये पेरिस के हुस्न को खराब कर रहा है।
सच में?
जी हाँ, लेकिन आज देखें, वो पेरिस की सबसे बड़ी पहचान है। और फिर ला देफांस का इलाका है, वो कारोबारी जिला, ऊंची इमारतें, ग्रैंड आर्च। وہ بالکل مستقبل کا پیرس لگتا ہے۔
تو شہر ایک طرف اپنی تاریخ سنبھالے ہوئے ہے، دوسری طرف آگے بھی بڑھ رہا ہے۔
بالکل، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔
اچھا، چلتے پھرتے پیرس کو محسوس کرنا ہو تو ایونیو دے شاپ سے لیجیے، کیا خیال ہے؟
اوہ، وہ تو پیرس کی مرکزی شاہراہ ہے۔ قومی تقریبات، پریڈ، جشن، کبھی احتجاج، سب وہیں ہوتا ہے۔ ایک طرح سے فرانس کا عوامی اسٹیج ہے۔
اور مونٹ مارٹ کا علاقہ، وہ تو بالکل مختلف لگتا ہے۔
ہاں، مونٹ مارٹ فنکاروں کا علاقہ رہا ہے۔ وہاں کا ماحول بہت بوہیمین سا ہے، اور سکرے کر بھی وہی ہے۔ اور ہاں، سین ندی کے کنارے وہ کتاب فروش، بکینسٹ،
ہاں وہ تو بہت مشہور ہے۔
وہ پیرس کی ادبی روح کی علامت ہے۔ کھلی ہوا میں کتابیں بیچنا، یہ علم تک عام آدمی کی رسائی کی ایک خوبصورت روایت ہے۔
آخر میں ذرا ان باغات کا ذکر بھی ہو جائے، جاردن یو لکسمبرگ، جاردن دی ٹوریلیز، یہ صرف گھومنے پھرنے کی جگہ ہے؟
نہیں، صرف گھومنے پھرنے کی نہیں، یہ شہر کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ سبز جگہ ہے نا، شہر کے پھیپھڑے کہلاتے ہیں۔ لوگوں کو شور اور بھیڑ سے سکون ملتا ہے، سماجی میل جول ہوتا ہے۔ یہ شہری زندگی کے معیار کے لیے بہت ضروری ہیں۔
تو جب ہم ان سب چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، محرابیں، محل، چرچ، مسجدیں، جدید عمارتیں، گلیاں، باغ، تو پیرس کی کیا تصویر بنتی ہے؟
تصویر یہ بنتی ہے کہ پیرس صرف خوبصورت مقامات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تاریخ، ثقافت، فن، سیاست اور روزمرہ زندگی کا ایک بہت پیچیدہ اور تہ در تہ امتزاج ہے۔
ایک ایسی کتاب جس کے ہر صفحے پر ایک نئی کہانی ہے۔
بالکل، اور شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری تہیں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ایک لمحے میں قرون وسطیٰ میں ہوتے ہیں، اگلے لمحے 20ویں یا 21ویں صدی میں۔
صحیح۔
تو یہ سوچنے کی بات ہے، ہے نا، کہ یہ ماضی حال کے ساتھ کیسے زندہ رہتا ہے، اور یہ ملاب آج پیرس آنے والے کے تجربے کو کیسے منفرد بناتا